और रात की क्लास चल रहा था। 5/11/1966 पांचवें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। भगवान ने गीता सुनाई थी, और राजयोग सिखाया था, तो गीता सुनाने और राजयोग सिखाने से भी क्या हुआ? कभी सुनाया था, जो सुनाया था वो भी पूरा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो सुनाया था गीता में वो भी पूरा नहीं है, जरा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे ये ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे तो खुशी से पढ़ते थे ना, जब ये ख्याल में आया ये गीता इनका तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा सोचते थे, मुझे खुद याद है कि मैं गीता उठा करके फेंक दिया, सोचा बाबा इनका क्या करूं, अब गीता रोज पढ़ता हूं, परंतु इसमें है तो कुछ भी नहीं। इन गीता के श्लोकों से तो कुछ भी मिलना नहीं है। सोचा ये भक्ति मार्ग की गीता से कुछ भी मिलना नहीं है, और अभी ये तो बाप पढ़ाते हैं ना, क्या पढ़ाते हैं? हैं? अभी कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। ये बात ब्रह्मा बाबा जानते थे हैं कि बाप पढ़ाते हैं गीता, और गीता पढ़ा करके राजयोग सिखाते हैं। क्या ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा गीता पढ़ाते थे या सिर्फ सुनाते थे? वो गीता में भी कृष्ण का नाम दे दिया है, भक्ति मार्ग की गीता में किसका नाम दे दिया? तो भक्ति मार्ग की गीता में जो नाम दे दिया कृष्ण का, उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? अरे दादा लेसराज ब्रह्मा की आत्मा सतयुग के कृष्ण की आत्मा नहीं है क्या? है या नहीं? तो किसके मुख से गीता सुनाई गई? जिस गीता के लिए कहा कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, मुरली में ही बोल दिया, क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि मंथन तो हुआ ही नहीं, बिना मंथन के अमृत कैसे निकलेगा? शास्त्रों ने तो गायन है, ज्ञान सागर का मंथन हुआ फिर अमृत में निकला। दूसरी बात, कृष्ण ने गीता सुनाई भक्ति मार्ग में तो उनके हाथ में क्या वाद्य दे दिया, वाद्य यंत्र क्या दिया? है मुरली, और मुरली भी काठ की मुरली दे दी। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? है किसके द्वारा शूटिंग होती है? है दादा लेखराज के द्वारा जो भी मुरली सुनाई गई वो पटबुद्धि की मुरली थी या बुद्धि में समझ में भी आई? तो भक्ति मार्ग में काठ की मुरलियां दिखाएगी। बरोबर शूटिंग संगम में होती है। और कृष्ण को तो बच्चा कहा जाता है, राम को बाप कहा जाता है, और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कब मनाया गया है? 76। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिवस दिवस मनाया गया तो जरूर मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म की बात है ना? आत्माओं के बाप की तो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बाप जो शिव है उसके लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म का गायन है महाशिवरात्रि। तो क्या 76 में दुनिया में महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि थी? उस समय तो नहीं कहेंगे। छिहत्तर में भी नहीं कहेंगे, 47 में भी नहीं कहेंगे। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई शुरू की और ब्रह्मा कुमारी नाम बदल के रख दिया, पहले क्या नाम था? ओम मंडली। और ओम मंडली की शुरुआत कब से हुई? 1936-37 से। तो 36-37 में भी बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो नहीं मनाया जा सकता। प्रत्यक्षता जन्म को कहा जाता है, माता रूपी धरणी में जब बीज डाला जाता है तो क्या उसे जन्म कहा जाता है? है? नहीं। और जो बीज भी डाला गया वो बीज पहले पांच तत्वों का पुतला बनता है, जड़ या चैतन्य आत्मा उसमें होती है, है? जड़ पुतला होता है। जैसे माँ के गर्भ में बीज भ्रूण बनता है और वो भ्रूण बड़ा होता है तो निर्जीव पिंड बनता है। चार पांच महीने के बाद फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अब यहां तो बेहद की बात है, चार महीने की पांच महीने की बात नहीं, परम ब्रह्म की आयु 40 साल, 7 साल में 40 साल जोड़े गए तो उस ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है। मृत्युलोक पूरा होगा तो कौन सा लोक आएगा? उस आत्मा के लिए अमर लोक आ जाता है, जिसका इशारा मुरली में दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। वो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, मना राम वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या शरीर का हुआ? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। जानने वालों ने 76 के बाद से पहचानना शुरू किया कि ये आत्मा बाप की आत्मा है, मनुष्य शक्ति की बाप की। लेकिन मुरली में बोला है कि एक ही आत्मा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, माना सृष्टि के आदि में, शूटिंग के आदि में 36 में जिसने बीज बोया या जिसके द्वारा निमित्त मात्र बीज बोया गया ज्ञान का, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप था। परंतु बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि बीज कब बोया गया, किसने बोया। बच्चों को पता होता है या माता को पता होता है? माता को पता होता है। तो 36 भी मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, 47 भी नहीं, 76 को मनुष्य सृष्टि के बाप जिसे राम बाप कहा जाता है, जो नर से नारायण बनता है पुरुषार्थ करने के बाद, उस बाप की आत्मा की प्रत्यक्षता हुई। तो यहाँ टैली किया गया, 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग से कि वहां जो गीता सुनाई गई उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हुआ उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में उसकी शूटिंग हुई। संगम में जो सहन शक्ति का आधार आगार कहो, सारे विश्व की बड़े से बड़ी माँ कहो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ने सहन शक्ति का 100% पार्ट बजाकर दिखाया, परंतु वो निमित्त मात्र माता का रूप था या भगवान का पिता का रूप था? माता का रूप था। उस माता के द्वारा भी जो सुनाया भगवान ने वो भी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा से टैली किया गया कि रोज गीता पढ़ता हूँ। मुनों ने तो भक्ति मार्ग की बात से समझा, लेकिन ये बात शूटिंग पीरियड में भी लागू हो जाती है। रोज गीता पढ़ता हूँ परंतु इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी इससे मिलना नहीं है। माता से वर्षा मिलता है या बाप से वर्षा मिलता है? अभी संगम में तो असली पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं, क्या माता तो बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी, टोटल नॉलेज नहीं पढ़ा सकती। टोटल ज्ञान की गहराई तो बाप पढ़ाते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट, फिर ज्ञान दूध पिलाने वाली माता का पार्ट, सहन करने वाली माता का पार्ट, उसके बाद बेसिक पढ़ाई जब बच्चा पढ़ लेता है माता से, फिर है टीचर का पार्ट। एडवांस की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, हाई सेकेंडरी स्कूल की या ऊंचे से ऊंचा जो स्कूल कहा जाता है मास्टर ऑफ नॉलेज, वो पढ़ाई तो सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं बाप के रूप में। तो बाप मिला, ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। क्या कौन मिला? 76 से वो ही बाप मिला, उसी आत्मा का पार्ट जो बाप भी है, टीचर भी है और अंत में सतगुरु भी है, वो बाप मिला। अभी हमको पढ़ना है, पढ़ना है या 76 से पहले पढ़ लिया है? पढ़ा तो, लेकिन ABCD की पढ़ाई पढ़ी, बेसिक नॉलेज पढ़ी, असली पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो जो भी पढ़ी पूरी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, तो भक्ति मार्ग से टैली करो। भक्ति मार्ग की पढ़ाई हुई या ज्ञान मार्ग की पढ़ाई हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई। अरे इस भक्ति मार्ग को तो थूक मारो।
क्या कह दिया
है? भक्ति मार्ग को तो थूक मारो।
ब्रह्मा कुमारियों के सामने बोलोगे?
बस। अरे इस भक्ति मार्ग की पढ़ाई की शूटिंग को लात मारो। इससे कुछ भी फायदा नहीं है। सुनना सुनाना हुआ। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सुनना सुनाना होता है। कुछ समझते तो है ही नहीं, तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हुआ या श्रद्धा विश्वास पक्का हुआ? भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को भी लात मारो। क्या उनमें पहला नंबर गुरु का नाम क्या है? हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि को तो साफ समझते हैं कि भक्ति मार्ग की दुनिया में 2500 वर्ष में ये देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं हुए, इनकी पढ़ाई से दुनिया नीचे गई कि ऊपर गई? नीचे गई। परंतु ये नहीं जानते थे कि शिव की तीन मूर्तियों में ब्रह्मा की मूर्ति भक्ति मार्ग में क्यों नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? अभी समझ में आया? क्यों नहीं मंदिर बनाए जाते, क्यों नहीं मूर्तियां बनाई जाती, क्यों नहीं याद किया जाता ब्रह्मा की उस मूर्ति को? जो दाढ़ी मूछ वाली विकारी मनुष्य की निशानी है। क्यों का सवाल का जवाब नहीं, क्या क्यों उनके पूरा क्या, अधूरा क्या, बीच में क्या? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी फालतू चली गई। तो इन देहधारी गुरुओं को लात मारो। कब? जब बुद्धि में बैठ जाए सदगुरु मिला। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु मिला या कुछ झूठा भी बताता है, सद माने सच्चा। तो देखो ये बात जब बुद्धि में बैठती है कि सदगति करने वाला वास्तव में हमको सदगुरु मिल गया, तो कितना नशा चढ़ता है। नशा चढ़ना होता है। चलो बच्ची, अभी ये ठक ठक चली। क्या मतलब? क्या ठक ठक चली? भक्ति मार्ग की ठक ठक अब तक चली। 5-7 रोज पिछाड़ी भी ये ठक ठक चलती रहेगी। कभी 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 तो रात को 10 11 12 बजे तक भी ये भक्ति मार्ग की ठक ठक दुनिया में चलती ही रहती है। दुख धाम को भूलना है। क्यों भूलना है? ये दुख धाम जिसकी अभी शूटिंग हो रही है, कब्रिस्तान बनना है। क्या कहा? कौन सा स्थान बनना है? कब्र का स्थान बनना है। कब्र माने है जहां मिट्टी में, धरणी में मन बुद्धि रूपी आत्मा है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, अमृत वेले खास याद करो, परंतु अतन को परखना भी तो है कि अमृत वेले उठते तो हैं, भले नैमी नाथ तो बन जाते हैं, लेकिन क्या मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में टिकती है लगातार? है माया बेटी आ जाती? अरे कोई भी बेटी बेटा बाटा याद आता है, लेकिन बुद्धि टिकती है? है कहते माया बेटी में बुद्धि चली जाती। अरे माया का तो धंधा ही है। क्या धंधा है? है माया बेटी का धंधा है कि आधा में बताए लूंगी, 2500 साल इस दुनिया में ईश्वर का राज्य चलता है और 2500 साल माया बेटी का राज्य चलता है। माया बेटी का राज्य अर्थात द्वैतवादी द्वापर युग का राज्य शुरू हो जाता है। द्वैत माने दो, एक का राज्य नहीं, कितने का? कम से कम दो का, दो से चार, चार से आठ, राज्य भी बटते जाते हैं, धर्म भी बटते जाते हैं, भाषाएं भी अनेक होती जाती हैं, धर्मखंड भी अनेक होते जाते हैं और सब आपस में टकराते हैं। तो ये द्वैत का दुगाड़ा है। क्या? एक की मत पर न चलना और अनेकों की मत पर चलना। एक की मत पर अर्थात एक जगत पिता को पहचान कर एक जगत पिता की मत पर चलना। क्या होता है? अभी शूटिंग पीरियड में क्या होने वाला है? बुद्धि एक बाप में टिकती है या माया बेटियों में टिकती है? कहां खींच जाती है? तो बताओ इस ब्राह्मण सृष्टि का क्या हाल होगा, क्या अनुभव करते हैं? चढ़ती कला का अनुभव हो रहा है या उतरती कला का अनुभव हो रहा है? दिल से पूछो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो शास्त्रों में क्यों लिखा है ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया, दूसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया, तीसरी बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दिया। कौन सी सृष्टि रची होगी? ब्राह्मणों की सृष्टि रची होगी ना, सन 36 में रची और 42 में बिगाड़ दी या नहीं बिगाड़ दी? एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया और सारी दुनिया दूसरी तरफ। वो मंडली वाली सृष्टि बिगड़ गई या रह गई? बिगड़ गई। फिर सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा दोबारा सृष्टि रची, और 76 में क्या हुआ है? जो मुरली में बोल दिया था वो ही हुआ। तुम बच्चे ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग है? जिन्होंने ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा था। तो तीसरी बार सृष्टि रची गई सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया की, और सन 47 में जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि रची गई थी जिनको बाप का पता ही नहीं था, वो सृष्टि का विघटन तब से शुरू हुआ, 76 से शुरू हो गया। तो दूसरी बार सृष्टि का विघटन हुआ और तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। अभी तीसरी बार फिर बाप का पार्ट बीज बोने का पहले, फिर ब्रह्मा का पार्ट, अम्मा का पार्ट दूसरा, फिर बाप सुप्रीम टीचर का पार्ट तीसरा, और उस तीसरे पार्ट में फिर पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो, तब है तीसरी बार सृष्टि रची गई, तब के लिए पहले तो बिगड़ गई, थूक मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई, अभी भी रुतवा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है या सुप्रीम सोल बाप का रुतवा चल रहा है? है देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं उनको मारो गोली, ऐसे नहीं। बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुदमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया कोई गोली मारो। जो दम भरते हैं, हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबी देदारी धर्मगुरु निकल पड़े ढेर के ढेर, द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? क्या भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था, आठ राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की नौ कुरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहां होती है? यहां होती है। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान होगा, और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहां होगी? यहां शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे, और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है, एक से न सुनकर अनेकों से सुनते हैं, विविचारी ज्ञान धारण करते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो अभी तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमको जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक का ही पार्ट है, वो हमको मिला हुआ है, तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते चलो बच्ची, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग के ढोल मजीरे नगाड़े कीर्तन आदि चलते ही रहते हैं, ठक ठक भक्ति मार्ग की होती ही रहती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? बेहद के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं कि बजने वाले हैं? अरे घोर अंधकार, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस महाशिवरात्रि में बेसिक ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में डूब जाते, एडवांस वाले भी घोर अंधेरे में डूब जाते हैं। अपने बाप को भी भूल जाते, अनिश्चय बुद्धि की मौत मारे जाते, वो घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि अभी माया सारी दुनिया में फैलाने वाली है, क्योंकि माया तो पावरफुल थी और अभी तो माया ने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। प्रकृति भी बाप की रचना है, माया भी बाप की रचना बेटी है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप कृति, प्रति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा एड़ी चोटी की ताकत लगा करके मन सहित सारी इंद्रियों की शक्ति लगा करके लंबे समय तक पावर भर करके उस प्रकृति रूपी चैतन्य रचना को रचा है। किसको? कौन है? जगदम्बा, जो दुर्गा कही जाती है। सात्विक रूप होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली। जब महाकाली अपना संपूर्ण रूप धारण करती है माया से हाथ मिला करके, तो माया और महाकाली दोनों के वाइब्रेशन में, दोनों की वाचा में, दोनों की दृष्टि में, दोनों की इंद्रियों द्वारा जो भी पार्ट बजाया जाएगा वो काला पार्ट बजाया जाएगा या गोरा पार्ट बजाया जाएगा, उस कालिमा में सारी दुनिया डूब जाएगी। क्या बेसिक के ब्राह्मण, क्या एडवांस के ब्राह्मण, सब अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में डूब जाएंगे। इतने डूब जाएंगे कि 84 के चक्र में मुझ आत्मा का क्या पार्ट है फर्स्ट क्लास पहले जीवन का, वो सोचना तो दूर, बाप को ही भूल जाएंगे। बाप पर ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु, निश्चय बुद्धि माना जन्म। तो अभी जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमर लोक की दुनिया में आ गए? घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु, क्योंकि जो 5000 वर्ष की मनुष्य सृष्टि में पहला पत्ता है उसका क्या हाल है? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र तो कृष्ण की सोल को आता है, तो जब पहला पत्ता ही जन्म मृत्यु के चक्र में है, उसकी ही पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो और पत्तों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल हो जाएगा है? नहीं हो सकता। तो बोला रात के 12 बजे भी ये पिछाड़ी तक भी ये रात गहराती चली जाएगी। इसलिए ये दुखदाम है, इसको भूलना है। क्यों भूलना है? इस दुनिया में अब रात्रि के जब घोर अंधकार की रात्रि होगी, माया और प्रकृति अपने बच्चों के साथ आवाज लगाएगी, क्या अंधेरा कायम रहेगा? तो ये दुनिया कब्रस्तान बननी है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। अज्ञान की रात्रि माना दुनियादारी में चले जाएंगे या ईश्वरीय धंधे में चले जाएंगे? हैं? दुनियादारी के धंधे में चले जाएंगे। 76 के लिए विनाश की घोषणा की थी, क्या दुनिया के विनाश की बात थी या दुनिया के धंधे धोरी में रमण करने की बात थी? क्या हुआ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है? दुनिया के भक्ति मार्ग के कंट घंटे में डूब गए या ज्ञान मार्ग की दुनिया में डूब गए? ऐसे ही अभी भी होगा। ये खत्म होने वाला है। कब्रस्तान या सभी आत्माएं, चाहे वे कोई भी धर्म के से कनेक्टेड हो, सूर्यवंशी से लेकर के नास्तिकों तक भी, सब कब्रस्तान होने वाले। हाँ, ये जरूर है, कोई अभी भी हो रहे हैं कब्र दाखिल। क्या बाप को भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया में रमण कर जाते हैं? कोई आने वाले समय में जल्दी कब्रस्तान होंगे और कोई देर से कब्रस्तान में दाखिल होंगे, और जो बहुत पावरफुल होंगे वो अंत तक भी बाप के सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन माया उनको भी नहीं छोड़ेगी। मना जो 8 शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, अष्ट देवों की, उनको भी माया धराशायी कर देगी। तो बोला अब ऐसे होने वाले कब्रस्तान को हम क्यों याद करें? क्यों न उसे एक को याद करें जो कभी भी कब्रस्तानी नहीं बनता? सारी दुनिया कब्रस्तान हो जाती है, महाविनाश के गाल में चली जाती है, लेकिन वो काल के गाल में नहीं समाता। उसके लिए गायन है, भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है, जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या बोला है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उस एक को याद करें, फिर याद जहां जाना है उस घर को याद करें। नरक में ही जाना है कि स्वर्ग में भी जाना है? है स्वर्ग में भी जाना है, तो सुख धाम को याद करें, शांति धाम को याद करें, बाप को याद करें। तीनों तक जाना है या नहीं जाना है? है तो तीन तीन को याद करें। मुरली में तो बोला है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो तीन तीन को याद करें। तीन को याद करना है या एक को लव करना है, एकलव्य बनना है? तो क्या बाप ने झूठ बोला कि शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, मेरे को याद करो? तीन को याद करें या एक को याद करें? है? है, अगर एक को पहचाना है कि वो एक ही आत्मा है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, अगर उसको पहचाना है तो फिर बस वो हमारा बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सो हमारा भी बाप। बाप से कुछ मिलता है? है, वर्षा मिलता है। निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? निराकार बाप शिव, उससे निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलता है। निराकार बाप शिव साकार में प्रवेश करता है, तो साकार निराकार का मेल, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, जिसको भक्ति मार्ग में भी गलती से शंकर समझ लिया है। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति, अरे शंकर रचयिता है या रचना है? तो याद रचना को करना है या रचयिता को करना है? रचयिता को याद करना, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। और दूसरी बात, शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थी है, तो संपन्न है या अधूरा है? है अधूरा है, तभी तो याद में बैठा है। पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। हाँ, जब पहला सब्जेक्ट 100% पास कर लेता है, तब उसकी यादगार बनती है संसार में। जो यादगार सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियों के रूप में मिली है, दुनिया में शिवलिंग के सबसे जास्ती मंदिर हैं, वो सार्वभौम है। जो इंद्रियों वाले शंकर के निराकारी रूप की यादगार है, और निराकारी रूप भी कैसा, साकारी लिंग बड़ा रूप, सो निराकारी हीरा रूप, जो सोमनाथ मंदिर में भक्ति मार्ग का सतो प्रधान यादगार, सोमनाथ मंदिर जिसमें लिंग में हीरा रखा हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार है, है? कौन सी आत्मा की यादगार है, है? शिव बाप की यादगार है, बूढ़ी माता बता रही है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, न मैं पूजी बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं, अब बताओ। वो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग में हीरा लगा हुआ था, जिसकी हीरे की और लिंग की विक्रमादित्य राजा याद करता था, वो किसकी यादगार है? आत्माओं का बाप तो कहता है क्या कि न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, तो हीरा जो लिंग में जड़ा हुआ है वो हीरा किस आत्मा की यादगार है, है? शिव बाप की यादगार है, मनुष्य सृष्टि का बाप पूज्य भी बनता है और मनुष्य सृष्टि का बाप पुजारी भी बनता है। जिसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा और हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है, अगर शिव की यादगार है, आत्माओं के बाप की यादगार है, तो वो पत्थर बुद्धि कभी बनता है, है? जिसमें प्रवेश करता है वो आखिरी पत्थर बुद्धि भी 84वें जन्म में बनता है। तो देखो बताया, जहां जाना है उसको याद करना है, तो बताओ कहां जाना है, कहां जाना है, है? पहले कहां जाना है, शांति धाम जाना है। अच्छा, शांति धाम जाना है तो कोई शांति देवा गाया हुआ है, कौन है? भक्ति मार्ग में कह देते हैं शंकर, क्योंकि वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। हाँ, शंकर वाली आत्मा ही शिव बाप के बताई हुई युक्ति के आधार पर पुरुषार्थ करके जब अखंड याद में टिक जाती है तो शिव बाप समान बन जाती है। जो बाप का विरुद्ध है कि मैं आता हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए, तो कोई अव्वल नंबर में बाप समान बनता होगा ना, जो बनता है वो बड़ा बच्चा कहा जाता है। हिस्ट्री में राजाओं ने अपना सारा वर्षा राजाई का कौन से बच्चे को दिया, है बड़े बच्चे को, तो बताओ आत्माएं जो हैं, आत्मा आत्मा भाई भाइयों का परिवार बाप के साथ उन आत्माओं में बड़ा भाई कौन है और बाप कौन है? शिव बाप बाप है और बड़ा भाई राम वाली आत्मा, नारायण वाली आत्मा। तो दादा हुई या नहीं हुई? है, हुई। अब बताओ बीके वाले ब्राह्मण हो या पीबी के अपन को कहने वाले ब्राह्मण हो, अभी तक वो बाप दादा किसको मानते थे, किसको जानते थे, बाप दादा के रूप में किसको याद करते थे? ब्रह्मा को दादा और शिव को, शिव को बाप। अरे ब्रह्मा अगर पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो उसको जन्म देने वाला बाप कौन है? है शिव बाप। तो देखो मुगालते में आ गए ना, न बी के जानते हैं न पी बी के जानते हैं। जब जानते ही नहीं बाप को तो याद कहां से करेंगे? देहभान में इतने चूर हैं कि देह अहंकार के कारण देह के बड़े भाई को ही दादा समझ बैठे और देह के बाप को बाप समझ बैठे। वास्तव में अगर अपन को आत्मा समझते हैं कि हम सब ब्राह्मण आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो आत्माओं के बाप को बाप कहना चाहिए और आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है उसको दादा कहना चाहिए। न कहते हैं न जानते हैं न उस बाप दादा को आज तक याद करते हैं। तो बताओ वर्षा मिलेगा है? कैसे मिलेगा? इसलिए बोला कि तीसरी बार सृष्टि रची ब्रह्मा ने तो भी समझ में नहीं आई। अरे ये कैसी ब्राह्मणों की सृष्टि है? रोज मुरली में समझाते हैं बच्चे बाप का परिचय दो। बाप का परिचय दो। बेसिक नॉलेज में भी शुरू से सुनते आए बाप का परिचय, पहले पहले बाप का परिचय। ब्रह्मा कुमारियां अबोध बच्चे, गोद में खेलने वाले बच्चे, अम्मा की गोद को ही बड़ा भारी पुरुषार्थ, बड़ी भारी प्राप्ति समझने वाले बच्चे, शिशु बच्चे है ना। हम भी थे, हम भी थे या नहीं? हम भी थे। तो वो भी प्रदर्शनी लगाते हैं, मेले मलाकड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठा है पहले दो, तो कौन सा चित्र रख देते हैं? हैं? हाँ, निराकार शिवलिंग का चित्र रख देते हैं 32 किरणों वाला। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि निराकार के गुण होते हैं, निराकार में अवगुण होते हैं, गुण और अवगुण शरीरधारी में होते हैं या निराकार में होते हैं? वो तो निर्गुण निराकार गाया हुआ है, उसके बच्चे भी आज तक बोलते हैं अंदर अंदर। जब बुद्धि देह रूपी मिट्टी में जैसे कब्र में मुर्दा रगड़ करता है तो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि मिट्टी में धरी हुई है, बरोबर हम नीचे जा रहे हैं या मिट्टी की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मन बुद्धि से? हैं? नीचे जा रहे हैं। तो देखो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी मुगालते में आकर के वो निराकार कोई जीवन मुक्ति और मुक्ति का भरसा देने वाला रचयिता बाप समझते हैं। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हैं? साकार होता है। अगर निराकार तो निराकार आत्माओं को परिचय देकर उनके स्वरूप का बोध कराता है। पहले नहीं जानते थे कि हम आत्मा क्या है, बाद में अभी बाप के द्वारा जाना जो आत्माओं का बाप है कि हम तो निराकार आत्मा हैं, हम निराकार आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो नाम कभी बदलता नहीं और आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं। और शिव का नाम बिंदु पर पड़ता है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो वो निराकार होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है और निराकारी ज्ञान का वर्षा जो देता है और जिसको देता है वो परंपरा आज भी मनुष्य शक्ति में चल रही है। मनुष्य शक्ति में जो भी बाप होते हैं वो अपना वर्षा बड़े भाई को ही दे रहे हैं। देते हैं या नहीं? और गीता में भी लिखा हुआ है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस, मेरे रास्ते का ही इस दुनिया में मनुष्य सब अनुकरण करते हैं। जिस रास्ते पर मैं चला हूँ संगम में उसी रास्ते का मनुष्य अनुकरण करते आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में। तो देखो वहां से परंपरा शुरू हुई, शिव बाप आत्माओं का बाप किसको वर्षा देता है? हैं? बड़े भाई को वर्षा देता है। निराकार बाप निराकार आत्मा बनने वाले को वर्षा देता है। जो निराकारी आत्मा के स्टेज पहले पहले धारण करेगा वो बड़ा बच्चा हुआ और उसी बच्चे की यादगार में शिवलिंग बनाया गया है, वो बच्चा ही पूज्य बनता है और वो बच्चा ही द्वापर से पुजारी बनता है। आत्माओं का बाप शिव न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। तो वो शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है उस याद में बैठे हुए पुरुषार्थी का संपन्न रूप है, जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया है वो शिवलिंग ही गीता में बताया है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त कैसे? वो तो बड़ा रूप है, अव्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त इस आधार पर हुआ कि उसको नाक आंख कान हाथ पांव नहीं दिखाए गए हैं। ये 10 इंद्रियां दिखाई नहीं गई है। 10 इंद्रियां साकार शरीर की दिखाई जाती है और वो तो निराकारी स्टेज में टिक गया, आत्मा बन गया, मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बाप बन गया, जिसका इस संसार में कभी विनाश नहीं होता, जो गीता में बोला है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो सदा सत्य है। सत्य माने सच्चा। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाता है वो कैसा पार्ट बजाता? सत्य पार्ट बजाता है। संगम युग में भी जो पार्ट बजाता है वो अज्ञानियों की आंखों में नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। वो नारियल बहुत ऊंची स्टेज में लगता है कि नीचे लगता है? हैं? हाँ, उस नारियल फल में जो जास्ती यूज किया जाता है वो ज्ञान जलों से का यूज किया जाता है कि मास यूज किया जाता है? हैं? हरा हरा जो फल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो यूज किया जाता है, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जल को ज्ञान जल कहा जाता है। उस ज्ञान जल में जो सदा निवास करता है उसका नाम काम के आधार पर रखा गया नारायण, नारायण। विष्णु की शेष सैया कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो जो हमारे बाप का घर सो हमारा घर। हम भी इस अज्ञान की दुनिया में निवास न करें। मन बुद्धि से तो छोड़ो, जो इंद्रियां की 10 रूप हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों से भी इस धंधे धोरी की दुनिया में बिल्कुल निवास न करें। ऐसे बाप के बच्चे बने कि ज्ञान जल में ही सदैव रमण करें। तब हम आत्मिक स्टेज धारण कर लेंगे। सहज सहज धारण करेंगे अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी, तो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो धर्मराज की सजाएं भी खाएंगे, और फिर जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा। इसलिए बोला तुमको याद करना है जहां जाना है। कहां जाना है? क्षीर सागर में जाना है, ज्ञान जल में जाना है, ज्ञान जल में रहना है या नहीं रहना है? है? रहना है। वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है, और वो हमारा सुखधाम भी है। क्या सुख महसूस होता है? अभी भी संगम युग में जो बाप के बच्चे हैं उनको बड़ा सुख महसूस होता है। बाई चांस फोन भी आ जाएगा तो भी दुनियादारी भूल जाती है, इतने आनंद में आ जाते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पूछना है, सब सब भूल जाता है। इतने आनंद विभोर हो जाते हैं। और जो मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं वो मुझे बुलाते भी नहीं, विधर्मी आत्माएं, विदेशी आत्माएं बुलाते भी नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, देशिक ब्राह्मणों में भी, मना आधार मूर्त जड़ों में भी ऐसे विधर्मियों के आधार मूर्त मौजूद हैं, और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी बीज रूप आत्माएं मौजूद हैं जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों का मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, देह अभिमान का। वो छिलका छोटे मोटे ज्ञान के दंडों से, ज्ञान के बाणों से उतरता ही नहीं। थोड़ा सा योग बल का कोई असर नहीं होता। मिसाल दिया, जैसे गर्म तवा होता है उस पर पानी की थोड़ी बूंदें डालो ज्ञान जल की, तो क्या होगा, छुन्न हो जाता है। तो बताया कि जो बाप के बच्चे हैं 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आने वाले हैं, वो बच्चे आत्मिक स्थिति धारण करके पहले पहले बाप में मनमना भव हो जावेंगे। क्या हो जावेंगे? मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। इसने कहा, कौन सी आत्मा ने कहा मन मना भव? शिव की आत्मा ने। शिव को मन है? है? शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है। क्या वो संकल्प विकल्प चलाता है, मनन चिंतन मंथन करता है? है? मन बुद्धि से किसी को याद करता है? है? किसी को याद करने की दरकार नहीं। हाँ, उन बच्चों को याद करता है ताकि उन बच्चों को खुशी आए, वो बच्चे गहरी याद में टिके। कौन बच्चों को याद करता है? हैं? जो बाप के धंधे में लगे हुए, क्या बाप के धंधे में लगे हुए, बाप का धंधा देह के पेट की पूर्ति का धंधा है या आत्मा का जो बुद्धि रूपी पेट है उसको भरपाई करने का धंधा है? है तो आत्मा का जो पेट है ज्ञान जल से भरा रहे, याद के भोजन से भरा रहे, खूब भोजन ग्रहण करें, चबा चबा के मंथन करके और खूब ज्ञान जल से पचाएं, इतने पावरफुल बने जो विश्व की बादशाही में आठ दिशाओं के मालिक बन जाए, दिगोपाल। कितनी दिशाएं? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं और उनके चार कोने, आठ दिशाएं और एक ऊपर और एक नीचे, दसों दिशाओं के नंबरवार मालिक बने। ऐसे बुद्धि रूपी पेट की भरपाई करें और देह के पेट को क्या करें? भूल जाएं। तो हम ऐसी मुसाफरी पर हैं कि हमें बाप से मिलना है, बाप के घर जाना है। बाप का घर सो हमारा घर। बाप का घर कौन सा है? अरे निराकार बाप का घर, निराकारी धाम। निराकारी धाम में हमें रहना पसंद है कि विधर्मी आत्माओं को रहना पसंद है, विदेशियों को है? वो निराकार को याद करते हैं, साकार को मानते नहीं, तो उनको निराकार का घर मिलता है। और हम निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। आत्मा निराकार को भी मानते हैं और आत्मा को जो साकार घर शरीर है उसको भी मानते हैं, जिसके लिए बोला है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। जो इसे विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इसे विषय सागर विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाएगा। कहाँ कहाँ ले जाएगा? क्षीर सागर में ले जाएगा। कहाँ से निकालकर? पांच विकारों के विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाएगा, सुखधाम में ले जाएगा। कैसे सुखधाम में? उतरती कला वाले सुखधाम में नहीं। कौन से सुखधाम में? जहाँ तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों ही लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। क्या दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर निरोगी निरोगी 100% निरोगी तक बन जाएगा? ऐसी दुनिया में ले जाएगा। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप ले जाएगा। कौन ले जाएगा? है आत्माओं का बाप जो है वो क्या चीज है? क्या है? हाँ, अकूट ज्ञान का भंडार है, जो भंडार कभी फूटता नहीं। कोई सारा का सारा उसमें से निकाल ले तो भी अखूट बचता है। तो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बड़ा बच्चा बन जाता है, सारी प्रॉपर्टी लेता है या कुछ बाप के लिए छोड़ देता है, है? सारी प्रॉपर्टी का हकदार पूरा ही ज्ञान हक पकड़ लेता है तो भी उसके पास पूरा बचता है। इसलिए शास्त्र में बोला है पूर्णमेदं पूर्ण नदः पूर्णात् पूर्णं विदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है। तो ऐसे बाप का बच्चा जो निमित्त बनता है किस बात के हैं, सभी परिवार के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़ उनकी पालना के निमित्त बनता है। और कैसी पालना, यथा राजा तथा प्रजा। आज के जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, प्रशासक हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हैं वैसे ही प्रजा के लोग उनकी परवरिश करनी चाहिए। बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते, 100% उल्टा है। ये गायन कब का है, यथा राजा तथा प्रजा। वो अभी संगम युग का, स्वर्णिम युग का गायन है, जहां तुमको अभी जाना है। कहां जाना है, सुखधाम में जाना है या नहीं जाना है? जाना है, बरोबर। हम मुसाफिरी पर हैं, रूहानी मुसाफिरी पर। हमारी रूह कहां जाएगी, है? ऐसे कोई बच्चे विलायत से लौटते हैं अपने घर की ओर, तो अंदर जो ललक है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, है? माता पिता से मिलने जा रहे हैं। ललक रहती है ना याद की, तो पहली ललक है बाप की याद, दूसरी ललक है बाप का घर, और तीसरी ललक है जो दोनों से भी ऊंची है, बाप से भी ऊंची है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बाप क्या चाहता है, हैं? मेरे बच्चे कहां रहे, मेरे अंदर ही रहे, कहां रहे, सुख में रहे। बाप क्या चाहता है, सुख में रहे। तो सुखधाम है तुम्हारी ऊंचे से ऊंची गंतव्य स्थिति, जहां तुमको जाना है। शांति धाम जाना है, बाप के पास जाना है, और बाप से वर्षा लेकर कहां जाना, सुखधाम जाना है। तो गीता ने बताया अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार महाविनाश के टाइम पर सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उस मनुष्य सृष्टि के बाप में मत मना भव, मेरे मन में समा जा। उस मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में क्या है, क्या है, कौन है? शिव बिंदु। तो कहां समा जा, मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में जो ज्योति बिंदु आत्मा का शिव स्वरूप है उसी में समा। दुनिया की मनुष्य आत्माएं लास्ट में महाविनाश के समय बाप का पूरा परिचय पाएंगी या नहीं पाएंगी? फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सबसे आत्र मिलते हैं, कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से आंखों से मिलते हैं, कोई से कानों के द्वारा मिलते हैं, खूब वाणी सुनते हैं बाप की, मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार, कोई मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा बाप की पूरी पहचान लेते हैं, बाप का पूरा रूप स्वरूप साकार और उसमें ज्योति बिंदु निराकार वो अच्छी तरह पहचान लेते हैं और याद करते हैं। तो अंत समय में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के अंदर कौन सा संकल्प चलेगा? हैं? मत मना भव, क्या संकल्प? मेरे मन में समा, मेरे मन में बिंदी, तो कहां समा जा? उसी बिंदी में समा जा। इसलिए झाड़ के ऊपर वो ही बैठा हुआ है नग्न रूप, सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे से खींच करके उसी रूप में समा रही है। महाविनाश काल में सबके संकल्प अलग अलग हैं, 500 करोड़ के या एक है, वो अलग अलग संकल्प एक ही संकल्प में समा जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में बोला है आत्माएं बुदबुदा हैं, सागर के बलबूले, छोटे बड़े बलबूले सागर से निकलते हैं और सागर में समा जाते हैं। तो इस सारी मनुष्य सच्ची की है, जो भी प्राणी है सब उसी में समा जाएंगे और फिर आत्माएं जो चैतन्य है, मन बुद्धि वाली है, वो तो ज्ञान धारण करके सतो प्रधान बन जाती। कैसे? ज्ञान जल से सतो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? ज्ञान जल में स्नान करके सात्विक बनती है। लेकिन जो पांच तत्व हैं जड़, बुद्धि नहीं है, कैसे हैं? जड़ तत्व है, वो कैसे सतोप्रधान बनेंगे? है किसके वाइब्रेशन से? हाँ, जो 4.5 लाख मनुष्य आत्मा है, जो बीज रूप स्टेज में समा जाती है, उनका संगठन इस संसार में तब तक काम करेगा जब तक पांच तत्वों की, जड़ तत्वों की दुनिया जो तामसी बन गई है, जैसे सारी सृष्टि में जलमयी हो जाएगी, सब डूब मरेंगे, तो तामसी बन गया जल या सात्विक रहा? तामसी बन गया। अग्नि एटम बम्ब जिनमें आग ही आग भरी हुई और ऊपर से ओजोन किरण फटती जाती है, सूर्य जोर से तपेगा, आग बरसाएगा, तो अग्नि ने कैसा रूप धारण कर लिया? तामसी रूप। और झंझावात जिसे कहते हैं, वायु क्या लाती है? तूफान लाती है। कितने बड़े तूफान लाएगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। आकाश जोर से पांच तत्वों के आघात से तप जाएगा। पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से। क्योंकि आज की तामसी दुनिया में मनुष्य अहंकार में आकर के दुनिया को मैं स्वर्ग बनाऊंगा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी करता जा रहा है। भूकंप आएंगे तो ताश के पत्तों की तरह सारी अट्टालिकाएं गिर जाएंगी। अरे ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान तो क्या, एक एक मंजिल के मकान भी सारे गिर जाएंगे और सब दब के मर जाएंगे। हाय हाय करके शरीर छोड़ते रहेंगे। उतने ही लंबे समय तक उनको हाय हाय करनी पड़ेगी जितना उन्होंने दुनिया वालों को, दूसरी आत्माओं को दुख दिया। तो अंत मते सो गति को प्राप्त करेंगे। कोई ज्यादा सुख भोगेंगी, कोई कम सुख भोगेंगी, कोई ज्यादा दुख भोगेंगी, कोई कम दुख भोगेंगी। नंबरवार कर्मों के आधार पर अपना अपना प्राणी शरीर छोड़ करके सभी आत्माएं अंत में उसी एक बाप में समा जाएंगी। तो पहला सुधार है आत्माओं का, जो ज्ञान ग्रहण करती है उन आत्माओं का बाप है शिव। इनका बाप है जो आत्मा बनते हैं, जो आत्मिक स्टेज पूरी धारण नहीं करते हैं उनका बाप, असलियत में नहीं है। जो असलियत में बाप के बच्चे हैं वो बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। जिनको तुम बच्चे बाप कहता है उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जो देखने में तो आते हैं कि देह से सन्मुख बैठे हैं, मुख के सामने बैठे हैं, लेकिन मन बुद्धि देहधारियों में बाहर की दुनिया में पड़ी हुई है। तो सन्मुख हैं वास्तव में या विमुख हैं? विमुख हैं। तो वास्तव में जो सन्मुख बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है? है 4.5 लाख। और 4.5 लाख में भी आधे हैं पाप आत्माएं और आधे हैं पुण्यात्माएं। आधे हैं रुद्रमाला के वो स्पेशल मरके जो रुद्रमाला पहले तैयार होती है, और आधे हैं चंद्रवंश से आए हुए विजयमाला के मणके, जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं आते। तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा सुधरने में? रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा टाइम लगता है। जो विजयमाला के मणके हैं विकारों पर पहले ही जीत पाने के कारण उनसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, है सुखधाम में पहुंच जाते हैं, सुखधाम की राजधानी में पहुंच जाते हैं। बाद में फिर रुद्रमाला के जो भी नंबर बार मणके हैं जो जो सुधरते जाएंगे सो विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। आखरीन सुधरते सुधरते 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं मां विनाश के काल तक उस एक साकार सो निराकार बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी और उसकी याद में टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। तो जिसकी याद में टिकेंगी उसी में समा जाएंगी मन मना भव। उसके बाद आत्माओं का काम पूरा हुआ सुधार का कि पांच तत्व जिनसे ये शरीर बनते हैं उन पांच तत्वों का भी काम पूरा हुआ। पांच तत्व सतो प्रधान बन गए नहीं बने उनका सुधार भी होना होता है। वो सुधार योग बल से होगा। योग माने प्यार स्नेह। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। क्या पेड़ पौधों को लगातार काटना चाहिए है? हरा हरा काट देना चाहिए नहीं काटना चाहिए? क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा है। कोई पेड़ का दाई ओर की जड़ काट दो तो दाई ओर की डाली सूखेगी सारा पेड़। इससे क्या साबित हुआ है पेड़ में आत्मा है या नहीं है? है तो देखो आत्मिक स्थिति ये कहती है कोई प्रकार की जड़ या जंगम चैतन्य किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि पेड़ पौधों को काटना ये भी हिंसा है। तो जो छोटे छोटे कीटाणु हैं चींटी है मक्खी मच्छर हैं जिनको आज हम विदेशीयता के प्रभाव में आकर के केमिकल दवाइयां छिड़क करके लगातार मारने की कोशिश करते हैं वो आत्माएं और ही दुनिया में बढ़ रही हैं या घट रही हैं? तो बताओ हम जो मारने का प्रबंध कर रहे हैं हत्या कर रहे हैं प्राणियों की वो नेचुरल बात है या अस्वाभाविक है? है अननेचुरल है। इसलिए जितने भी धर्म हैं झाड़ में जो भी धर्म दिखाए गए उनमें एक धर्म नहीं दिखाया गया है जैन धर्म। जैन का मतलब है जिन की औलाद। जिन माने जित जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनको जिन्होंने फॉलो किया वो जैन कहे गए। वो कोई दूसरा धर्म नहीं है। वास्तव में इंद्रियों को जीतने वालों की यादगार है और वो इंद्रियों को जीतना अंत की बात है या बीच के पुरुषार्थ की बात है? अंत में वो जैन धर्म की आत्माएं भी निकलेंगी जिनको देखा होगा कि जैन धर्म के लोग आज भी सरसब्ज हैं या बौद्धियों की तरह भीख मांगते फिरते हैं। बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है। परंतु वो भीख मांग रहे हैं। और जैन धर्म भी अहिंसावादी है, क्या अंतर है? तो कहा तुम ऐसी मंजिल पर पहुंचेंगे, रुद्रमाला के नजदीक, तब विनाश होगा। और फिर भी इतना बड़े जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मालिक बनाते हैं, उनके बच्चे अपन को समझना और बात है। कोई कोई ये बातें गहराई से समझनी है, कोई को नहीं समझनी है। बहन और भाई दोनों के लिए दादे की मिल्कियत पुरुषार्थ से प्राप्त होगी। एक है पार्टी बंगलौर की और दूसरी आई है मिर्जापुर से। कहां से आई है? है मीर जापुर। मीर साहब मुसलमानों में होते हैं, मीर माने शाहजादा, या हिंदुओं में, मुसलमानों में होते हैं। तो एक है मिर्जापुर की पार्टी और बनारस की। कहां की? जहां ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है। कोई बच्चे ने कुछ कहा, एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, वो कहां है? उस समय तो हद के बच्चे बैठे हुए थे, या बेहद ज्ञान में घुसने वाले बच्चे बैठे थे 66 में, है हद के बच्चे बैठे हुए थे। बाबा बेहद में बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? तो जो यहां बोला उनमें एक तो है कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, तो किस तरफ बाबा का इशारा गया होगा? है हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो सूर्यवंशियों की रूहानी मिलिट्री तैयार हो रही है, उस रूहानी मिलिट्री का कमांडर इन चीफ शंकर को बताया। किसको बताया? शंकर। पूछा वो कहां है? यहां है ब्राह्मणों की दुनिया में। और साथ में कौन है? है कमांडर इन चीफ जो शंकर है मिलिट्री का, रूहानी मिलिट्री का, वो तो यहां है, परंतु अकेला है कि उसके साथ कोई और भी है? है किसी बच्चे ने कुछ कहा, राइट हैंड कौन? राइट हैंड। अच्छा कुछ किया जाता है तो राइट हैंड से किया जाता है। देखो ये मिलिट्री वाला कौन? कमांडर इन चीफ। ये भी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उसके मुकाबले? अरे जो राइट हैंड है, है? अरे मिलिट्री का जो चीफ होता है उसका काम क्या है? है युद्ध करना, जीत पाना। और जीत पाई जाती है तो जो पार्टी हारती है उसका नुकसान होता है या फायदा होता है? तो मिलिट्री वाला भी ऐसे नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा अच्छा काम करेंगे राइट हैंड से। क्या स्थापना का काम कैसे करेंगे? राइट हैंड से। तो बताओ, दो मालाएं हुई, एक रुद्र माला और एक विजय माला। विजय माला कहां से निकलेगी? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा राइट हैंड से निकलेगी या लेफ्ट हैंड से निकलेगी? राइट हैंड से। पूजा वगैरह होती है राइट हैंड से, दान पुण्य होते हैं कैसे? राइट हैंड से। लेन देन राइट हैंड से, और राइट हैंड में नंबर वार हैं एक जैसे, कोई दाएं हाथ से नहीं लेते हैं। क्या कोई दाएं हाथ से लेने का काम नहीं करते? दान धर्म देने का काम करना है राइट हैंड से या लेने का काम करना है? है देने का काम है दान पुण्य, और लेने का काम भिखमंगों का है या दाता का है? भीख मांगने वालों का। देखो आंखें हैं, किसी ने कुछ कहा, है शिव बाबा को कौन है राइट हैंड है? शिव बाबा के संपन्न स्टेज वाले कितने बच्चे है? दो बच्चे, एक विजय माला का है, एक रुद्र माला का है। रूहानियत की स्टेज में रहने वाली मिलिट्री का हेड, कमांडर इन चीफ, उसको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहें? हैं? लेफ्ट हैंड। बाबा ने पूछा शिव बाबा को कौन है, किसी ने कहा जी है। अच्छा वो क्या सुनते हैं? जो है वो क्या सुनते हैं? किसी ने कहा वो सब सुनते हैं, साकार द्वारा वो सब देखते हैं। देखो तुम जो रिस्पॉन्ड करती हो ना वो सुनते हैं। किसी ने कहा जी कहती हूँ वो सब सुनते हैं। अच्छा जो सब सुनते हैं वो कहाँ है? बाबा पूछते हैं चरण है? किसी ने कहा जी हाँ है। कहाँ है चरण? किसी ने कहा उसका साकार तन बैठा है, यही चरण है। यानी तुम समझते हो ये शिव बाबा का चरण है। कौन? अरे ब्रह्मा बाबा। ये शिव बाबा का हैंड है, वो चरण है ब्रह्मा बाबा। चरण माने वो तो मालूम है कि ये नहीं चरण माने बुद्ध रूपी पांव, जैसे बुद्धि से कहां का कहां पहुंचा जाता है वैसे चरणों से भी पहुंचा जाता है। तो बताया साकार तन उसका जो है वो साकार तन में जब आता है, तो पूछा जब वो साकार तन में इसमें आता है ब्रह्मा के तन में, तो बाबा पूछते हैं उनको पैर हैं शिव बाप, जब ब्रह्मा के साकार तन में आता है तो उनको चरण हैं, उनको ब्रह्मा का साकार तन चरण कहें। अरे इतनी देर में जवाब नहीं आता, चरण माने बुद्धि रूपी पांव कहें है? नहीं कहेंगे, ये ब्रह्मा का तन जो है वो शिव बाप का बुद्ध रूपी पांव नहीं है। किसी ने कहा जाता है तो पांव, इसके सिर्फ इस पांव से वो चलता है। यानी बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं, कौन बाबा बोलते हैं? ये ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि उनको पांव हैं। तो वो किसको पांव समझते हैं? ब्रह्मा बाबा किसको पांव समझते हैं? शिव बाबा के चरण, ब्रह्मा बाबा भी अपने को ही उसका पांव समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारियां भी, ब्रह्मा कुमार भी उसी ब्रह्मा को अपना शिव बाबा का चरण समझते हैं, बुद्ध रूपी पांव समझते हैं। तो पूछा क्या उनको पांव हैं? उनको पांव हैं अभी हैं या नहीं है? हैं? 66 की बात पूछा, उनको पांव हैं या नहीं है? ये जो मां है उनको सब है, जगदम्बा की तरफ इशारा किया। किसी ने कहा सब है, माना साकार चरण भी है और बुद्ध रूपी पांव के चरण भी है। ये है दीदी, मनमोहिनी दीदी की तरफ इशारा किया, ये है दीदी। किसी ने कहा बैठे तो हैं, सभी जो आए उनको बोल देवे कि लज्जा नहीं करें, क्या इस बात की लज्जा? जो कोई भी चीज चाहिए तो मांग लेवे, बोल देवे, माना ब्रह्मा बाबा को ये बातें समझ में आई नहीं आई, इसलिए फिर उनकी बुद्धि वो म्यूजिक की तरफ चली गई, म्यूजिक बजा। शिव बाबा को बाबा ने फिर बोला, शिव बाबा को टेम्परेरी चरण है, कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा को फिर नहीं समझ में आया, फिर इशारा दिया म्यूजिक बजा। इससे साबित क्या हुआ? है, साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा शिव बाप का बुद्ध रूपी पांव नहीं है। बुद्धि जो गहराई में जाती है वो बात नहीं है, कान ऊपर ऊपर की बातें सुनते हैं, लेकिन उन बातों को बुद्धि गहराई तक ले जाती है या कान ले जाते हैं, वाचा ले जाती है, हैं? बुद्धि ले जाती है। तो वो बुद्धि की बात, वो बोल बोल की बात वाचा की देवी तक रहती है। शिविन ब्रह्मा बाबा के साथ वाचा की देवी कौन थी? सरस्वती बाग देवी। और ब्रह्मा बाबा वाचा की देवी भी नहीं, काहे की? कान का देवता। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी पूजा दिखाते हैं। किसकी? बड़े कान वाले की, हैं? गणेश जी दिखाते हैं। किसका बच्चा है? हैं? शंकर का बच्चा, शिव का बच्चा नहीं। किसका बच्चा? शंकर का बच्चा। तो न बाबा को वो बातें समझ में आती बुद्धि से कनेक्टेड, न बाबा के बच्चों को जो बाबा की गोद से प्यार करते हैं, शिव बाप की मुरली से प्यार नहीं करते। तो जो शिव बाप की मुरली से प्यार करते हैं उनके लिए बोला मुरली से प्यार, तो मुरलीधर से प्यार। आज मुरली की बातें उन गोद में बैठने वाले जो ब्राह्मण हैं, जिनको ब्रह्मा की गोद का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, मम्मा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? ये मुरली बुरली धरी रहने दो, हम ये बातें तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ऐसे बोल देते। वो वाक्य मुरली का उन्हें याद ही नहीं जाता। क्या? कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। किसी ने कुछ कहा अच्छा, माता पिता का और बाप दादा का किसका किसका? माता पिता का और बाप दादा का। मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। फिर बोलते हैं साकार मुरली में प्रातः क्लास की वाणी में रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन माने झुकना। रूहानी बाप क्यों झुकेगा? है रूहानी बाप क्यों बोला फिर? है रूहानी स्टेज में रहने वाला वो क्यों कहता है कि रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमन? है हाँ, नमन इसलिए कहा कि जो बाप का काम करके दिखाए। एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। आज भी दुनिया में यही माना जाता है कि प्रैक्टिकल में पास तो पास, और प्रैक्टिकल में कोई फेल तो फेल ही माना जाएगा। छोरी में कितने भी अच्छे मार्क्स आए लेकिन प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माना जाता है। तो रूहानी बाप किस बच्चे को नमन करते हैं? है उस रूहानी बच्चे को नमन करते हैं, उन बच्चों को नमन करते हैं जो प्रैक्टिकल में राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। कितने बनते हैं? एक, दो या आठ? क्योंकि एक से राजधानी नहीं बनती, दो से भी नहीं बनती। राजधानी के लिए सब प्रकार के चाहिए। कौन कौन से? राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, और नहीं प्रजा को संभालने वाले राज्य अधिकारी चाहिए, विश्व की राजाई संभालने के लिए जो विश्व का महाराजा है वो चारों ओर दौड़ेगा है? नहीं दौड़ेगा। तो उसके हैंड्स चाहिए, तो वो रहेंस उन हैंड्स में राज्य अधिकारी भी हैं। उसके बाद राजा के परिवार में दास दासी का काम करने वाले और राज्य अधिकारियों के परिवार में दास दासी का काम करने वाले, फिर जो साहूकार हैं प्रजावर्ग के उन बड़े बड़े साहूकारों के घर में दास दासी का काम करने वाले। दास दासी चाहिए या नहीं चाहिए? तो दास दासियों की संख्या ज्यादा हुई या राज्य अधिकारियों या राजा रानी की संख्या ज्यादा हुई? दास दासियों की संख्या बहुत होती है, इसलिए बताया कि जो राज परिवार के दास दासी बनते हैं, राज परिवार में राज परिवार के बच्चे महलों में रहते हैं तो दास दासी भी महलों में रहते हैं। राज परिवार के जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो जो खाते हैं वो दास दासियों को भी वो ही भोजन मिलता है, और राजा रानी के संपर्क संसर्ग में रहने वाले जो दास दासी हैं उनका प्रजा वर्ग में मान मर्तबा दास दासी जैसा होता है या ऊंचा होता है? ऊंचा मर्तबा होता है। जैसे आज का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, और उसका सदैव साथ में रहने वाला अंगरक्षक हो, तो प्रजा वर्ग में उसकी मान्यता कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। तो यही बताया कि फर्स्ट क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, फोर्थ क्लास दास दासी भी होते हैं। जो बड़े बड़े चांडाल होते हैं राजघराने के, उनके घरों में भी दास दासियां देखे जाते हैं। वो कौन से क्लास के हुए? फोर्थ है, फोर्थ क्लास के। फिर प्रजा भी चार भागों में बटी हुई होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो ये कैटेगरीज हैं राजधानी की। वो राजधानी में सब चाहिए, तो आठ तो ये विशेष आत्माएं हैं। बाप की वर्षे की ऊंचाइयों को पाने वाली, परंतु उनकी प्रजा भी तो होगी, है, वो भी है। तो पूरी राजधानी स्थापन होती है कब? 36 में, 47 में, 76 में, या कब है? 2028 में पूरी राजधानी, पूरी राजधानी अगर 28 में होगी, जिसको बोला कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 वर्ष तुम बच्चों, तो एक दो के लिए कहा या ज्यादा के लिए कहा? आठ के लिए कहा। जो आठ हैं वो संपन्न आत्मिक स्टेज वाले होने चाहिए या नंबरवार की स्टेज में होंगे? है संपन्न स्टेज वाले, ऐसी संपन्न स्टेज वाले होंगे कि सारी दुनिया का विनाश होगा लेकिन अंत तक भी वो आठ बच्चे बाप के सहयोगी रहेंगे। इसलिए बोला है कोई कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सुख में रहते हैं। जिनके लिए अभी भी बोलते हैं कि बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते और बाप के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है? बाप के बिना बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बिना बाप नहीं रह सकते। क्या मतलब कि बच्चों की आंखों से बाप अगर ओझल हो जाए तो बच्चे भाग जाएंगे? है तो क्या मतलब है? हाँ, संपर्क कायम रहेगा, जब चाहे तब संपर्क जोड़ सकते हैं, उनका संपर्क कभी टूटेगा नहीं। इसलिए 2000 की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया, दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए लेकिन बाप बच्चों से कभी ओझल नहीं हो सकता, बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष हैं। मैंने 98-2000 में जो हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, खास एडवांस में अर्धविनाश हुआ, उसके बाद भी बाप बच्चों के सामने मौजूद रहता है या ओझल रहता है? मौजूद रहने का मतलब यह है कि द्वापर से भी जो जन्म होते हैं वो आठ बच्चे बाप के राजघराने के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं? बाप के दिल में समा कर रहते हैं या बाप के दिल से दूर हो जाते हैं? समा के रहते हैं। तो बोला बाप दादा का, किसका किसका? बाप दादा का। तो कौन से बाप दादा का बोला होगा? राम बाप का। राम बाप है देवान में बोल रहे कि आत्मिक स्थिति में बोल रहे है? राम वाली आत्मा आत्मिक स्टेज धारण करके बैठेंगे तो राम वाली आत्मा बाप है या बड़ा भाई है? है बड़ा भाई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बड़ा भाई भी बाप की नाम मौजूदगी में बाप समान कहा जाता है। तो अभी तो बाप मौजूद है या नहीं है? है? अरे बाप है या नहीं मौजूद है? है आत्माओं का बाप तो मौजूद है, संगम युग में ही है, यहाँ ही है, वापस परमधाम में तो नहीं चला गया, काम पूरा किए बगैर जा ही नहीं सकते। साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे, साथ लेकर जाएंगे। तो बाप ने जो वायदा किया है वो वायदा बीच में तोड़ देंगे क्या? है तो बेबी बच्चों ने तो 18 जनवरी 69 को ही समझ लिया कि बाप चले गए, और 76 की घोषणा के बाद तो बिल्कुल ही पक्का हो गया कि विनाश हुआ नहीं है, और लक्ष्मी नारायण का जन्म कहीं हुआ नहीं। तो सारा ज्ञान झूठा, ज्ञान के ऊपर से, मुरली के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उसी समय से उखड़ गया। हाँ, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है वो उसी को ही भगवान बाप समझ के बैठ गए, वो ही कृष्ण भगवान हो गया। कृष्ण भगवान बनाने की शूटिंग किसने कर दी? है, है? ब्राह्मणों ने की या दुनिया वालों ने? ब्राह्मणों ने कर दी। अब असल में बाप दादा समझ में आता है उन बच्चों को जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले। हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं, आत्मिक स्टेज में जो भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनमें बड़ा बच्चा बड़ा भाई है, और सब हम आत्माओं का बाप ज्योतिबिंदु शिव है, जिससे हम ज्ञान का वर्षा ले रहे हैं। नंबर वार इसलिए बोला कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, बाप के प्रॉपर्टी जो निराकार बाप है, निराकार की निराकार प्रॉपर्टी है ज्ञान की, उससे प्यार नहीं तो जैसे भगवान से भी प्यार नहीं। भगवान से प्यार है तो भगवान का वर्षा मिलेगा, वेद का बाप है बेहद ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो हमारा बाप भी है कौन? अरे जल्दी से मुख से नहीं निकलता, शिव बाप। और हमारा दादा भी है कौन? राम वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप। ये हमारे ओरिजिनल बाप दादा हैं। हम ओरिजिन में आत्मा हैं या शरीर हैं? ओरिजिन में अगर हम आत्मा हैं, और प्रैक्टिकल ये धारणा भी है कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं, और ये धारणा ज्यादा समय पक्की भी रहती है, तो हमारी बुद्धि में बाप दादा भी पक्का बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? कोई भी पूछे तुम्हारा बाप कौन है, है? तो बताओ, हम हैं निराकार आत्मा, हम निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव। हम हैं बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी। अंतर क्या है? हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं। और हम आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा राम बाप है, वो हमारा मनुष्य सृष्टि का बाप तब बनता है जब सुप्रीम सोल बाप शूटिंग करा करके इस सृष्टि से वापस वापस चला जाता है। उसकी नामौजूदगी में वो बड़ा भाई हमारा बाप समान बन जाता है। इसलिए एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया की कोई देवात्मा, कोई मनुष्यात्मा, कोई धर्म पिता, कोई राक्षसी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। यही परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है। एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। शिवराम मेंशंस कंपनी, बाप का नाम पहले, बच्चों का नाम नहीं देते। बच्चे अपने नाम को उजागर नहीं करते, किसका नाम बाला करते? बाप का नाम बाला करते। फर्म का नाम रखेंगे, उसमें अपना नाम ऐड नहीं करेंगे। तो बाप दादा समझ में आता है, फिर माता पिता। माता पिता कौन? पहले हम ब्रह्मा कुमार कुमारी थे तो माता पिता किसको समझते थे? है ब्रह्मा सरस्वती को समझते थे। अब किसको समझते हैं? है किसको? शिव बाप को, शिव और राम को माँ बाप समझते हैं। माँ बाप माता पिता है। विद्या पिता को, विद्या पिता को पिता समझते और जगदम्बा को माता समझते। जगत पिता हमारा बाप और जगत माता हमारी माँ। आत्मिक स्थिति में रहते हैं तब या देहभान में आते हैं, स्त्री पुरुष के देहभान में तब। आत्मिक स्थिति में है तो शिव बाप और माता हो गया परम ब्रह्म, कि जिस तन में भी मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा नामधारी बहुत हैं, उनमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। तो ये हमारे माता पिता हो गए, माता भी है और पिता भी। अर्धनारीश्वर हुए या नहीं हुए? आधा पंच तत्वों में रचा पचा स्वरूप है तो आत्मा, लेकिन वो आत्मा 84 जन्मों में पांच तत्वों में रचा पचा रहता है या नहीं है? है? रहता है। और वो बाप जो पांच तत्वों में रचा पचा नहीं रहता वो बाप है। फिर साकार सृष्टि में आ जाओ। अगर निराकार और साकार रूप धारण करने वाली आत्मा दोनों हमारे माता पिता हैं ओरिजिन में, तो कैसे हैं? शिव बाप ने बोला मैं आता हूं आशिक बनकर। तुमको माशूक बनाता हूं, आशिक पुरुष होता है मोस्टली या स्त्री होती है? है पुरुष आशिक होता है और वो है भी परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, और वो आशिक फिदा हुआ माशूक के ऊपर, फिदा होकर के आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? है आशिक माशूक के पीछे भागता है। पहाड़ पे चढ़ा बैठा हो, माशूक का नीचे हो, तो ऊपर से नीचे भागेगा या और ऊपर भागेगा? है नीचे भाग के आएगा। तो देखो वो कहता है कि जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है वो ही कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। तो दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनको भी क्या कहना पड़ेगा? है, है? दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं वो अपन को क्या कहेंगी तेरे सामने? अरे दुनिया की सभी आत्माएं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं साकार में, उस साकार और निराकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है। तो उस शिव बाबा के प्रति दुनिया की और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो आशिक हैं या माशूक हैं? आत्माएं, आत्माएं मासूक हैं, हैं? भूल ही गए, शिव बाबा जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए शिव बाबा मासूक है या आशिक है? मासूक है। जब ऊंचे से ऊंचा भगवंत ही कह रहा है कि शिव बाबा हमारा क्या है? माशूक है। तो दुनिया की सभी आत्माओं को क्या करना पड़े? है, है? आशुक बनना पड़े। किसका? एक शिव बाबा का। शिव बाबा एक ही माशूक है और बाकी सारी दुनिया आशिक है। तो वो परम ब्रह्म पहला ब्रह्मा का स्वरूप वो क्या है? है अगर उस माता के हम बच्चे हैं तो हम उस माता पर फिदा हैं। किस पर फिदा हैं? माता पर फिदा हैं। बच्चे किस पर फिदा होते हैं? माता पर फिदा होते हैं। तो ये तो बात हुई माता पिता की। मूल रूप में माता पिता आत्मिक स्टेज में देखा जाए तो शिव और उनका अर्धांग है माता। उसको कहा शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से क्या कहा? तुम सब पार्वतियां हो। क्या कहा? तुम सब पार्वतियां हो। पार्वती माने पार लगाने वाले। तो तुम सब में कितनी आत्माएं आ गई? है 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माएं आ गई, प्रजापिता सहित आ गई या प्रजापिता को निकाल करके आ गई? है, है? धीरे धीरे बोलते हाँ, इंक्लूडिंग प्रजापिता, प्रजापिता के सहित सभी आत्माएं उसमें आ गईं। किसमें? पार्वती के नाम में। सभी पार लगाने वाली हो,
पार लगाने वाली सभी हो।
सभी माने कितनी? 500-700 करोड़। उनके सन्मुख बैठ करके ये शिव बाप कह सकते हैं, तुम सभी कहेंगे हाँ, 4.5 लाख हैं जिनके लिए बोला तुम सब बच्चे हो, तुम सब हो पार्वती, पार लगाने वाली। कितनों को पार लगाने वाली है? सारी जड़ और जंगम सृष्टि को पार लगाने वाली। जो चैतन्य आत्माएं हैं, विषय सागर में डूबी हुई हैं, डूब रही हैं, उतरा रही हैं, उन सब को पार लगाने वाली। 500-700 करोड़ जीवन मुक्ति में जाएंगे कम या ज्यादा समय के लिए या नहीं जाएंगे? हैं? जाएंगे तो पार जाएंगे ना, कि विकारी दुनिया में ही डूबे रहेंगे? हैं? पार जाएंगे ना, कोई एक दिन के लिए जाएगा, कोई 2500 साल के लिए भी जाएंगे। तो तुम सब आत्माएं हो पार लगाने वाली, तो खुशी आना चाहिए कि नहीं है? हमारा टाइटल क्या है? क्या है? पार्वती, पार लगाने वाली। कोई नंबर में तो है, चलो अब्बल नंबर नहीं तो कोई नंबर है या नहीं है? जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, उनके 84 जन्मों में संसर्ग में संपर्क में आने वाली आत्माओं का ग्रुप होगा या नहीं होगा? जो भी आत्माएं 84 जन्मों में उन 4.5 लाख आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती हैं, उनकी शूटिंग इस संगम युग में होनी है या नहीं होनी है? होनी है। तो उन सबको पार कौन लगाएंगे? वही 4.5 लाख पार लगाने के निमित्त बनते हैं। जिन जिन के संसर्ग संपर्क में आएंगे उनको माना, उनके ऊपर निश्चय बैठेगा, जिनको जिनको विश्वास बैठेगा, उनके विश्वास को वो भरपाई करेंगे और पार ले जाएंगे। जैसे नाव पर बैठते हैं, बड़ी गहरी नदी है, हिलोरें खाती हुई बह रही है, तो नाव पर बैठने वाले जो नाविक है मल्लाह, उसके ऊपर विश्वास रख के बैठते हैं या बिना विश्वास के बैठते हैं? विश्वास रख के बैठते हैं। तो ऐसे ही उन 4.5 लाख आत्माओं में से प्रत्येक मनुष्य आत्मा जो बाप के बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो अपने संसर्ग संपर्क में 84 जन्मों में आने वाली आत्माओं को प्रैक्टिकल में पार ले जाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बोला तुम सब पार्वतियां हो, माता हो। क्या हो? माता। और उनमें प्रधान माता कौन हुई 4.5 लाख में? परम ब्रह्म। वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई जाती है, परम ब्रह्म। दोनों ही परम ब्रह्म हैं, या एक आत्मा परम ब्रह्म है? है? एक आत्मा परम ब्रह्म और जो दूसरी आत्मा है बाई ओर, वो परम ब्रह्म की सबसे बड़ी सहयोगिनी है लेकिन परम ब्रह्म नहीं है, क्योंकि शिव बाप स्त्री चोले में नहीं आते। किसमें आते हैं? पुरुष चोले में आते हैं। तो माता पिता बेहद में मूल रूप में कौन कौन आत्माएं हैं? हाँ, शिव बाप और परम ब्रह्म। जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम बड़ी माँ रखता हूँ। तो माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को, कैसे बच्चों को? अभी कड़वे तो नहीं बनते हैं कभी, है? कड़वे बनते हैं कि नहीं बनते हैं? अच्छा, हाथ उठाओ जो सदा मीठे रहते हो, कभी भी कड़वे न बनते हो। कोई नहीं हाथ उठा रहा? हाँ, एक ने हाथ, देख लो ध्यान से, फोटो खींचो। ओ पीछे, कभी कड़वा नहीं बनता है, अपने बच्चे के साथ भी नहीं, अपनी बच्ची के साथ भी नहीं, अपनी पहली रचना पत्नी के साथ भी नहीं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के सामने कभी कड़वा नहीं बनता। क्या? एक बच्चा निकला, नाम क्या है? रमा। रमा कहा जाता है पार्वती को, है? और पार्वती की कांति शोभा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, कम से कम एक तो निकला भी शक्कर मुंह में। तो बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों के प्रति एक ही निकला और कोई के प्रति नहीं, और शिथिल दे बच्चों के प्रति। कैसे बच्चे? शिथिल दे माने बहुत लंबे समय से खोया हुआ कोई बच्चा बहुत लंबे समय के बाद माता पिता को मिलता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है बड़े सिक से मिले हुए, शिकील दे बच्चे। कितने लंबे समय के बाद मिले है? 5000 साल के बाद है? यज्ञ के आदि में पहचाना था है? जो पहचाना ही नहीं तो मिले कहां से है? क्या बोला? सेवेंटी सिक्स में मिले रूहानी बाप के साथ। रूहानी बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गया। जयंती शिव बाप की जो बर्थनाटे पैनी नहीं बताई, बर्थ पाउंड बताई, हीरे जैसा जन्म, एक शिव बाबा की जयंती है। तो वो शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले गया जो सारी दुनिया में नगाड़े बजे बाजे बजे। पहले माँ पहचानती है, बाप पहचानता है कि बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, फिर परिवार वाले पहचानते हैं, मोहल्ले वाले पहचानते हैं। क्या कहा? जो देखे इन स्थूल आंखों से, जो सुने इन स्थूल कानों से। बच्चा पैदा होता है तो
कान से आवाज सुनते हैं ना पड़ोसी, वहाँ वहाँ, तो क्या कहते हैं बच्चा, पड़ोस में बच्चा आ गया, ये कहेंगे कि नहीं आया? आया। तो जो सुने, जो देखे, उसके मुख से आवाज निकले क्या, मेरा बाप आ गया। और एवरलास्टिंग माने या आज माने और कल न माने, नहीं आया, झूठ बोल दिया था, मुगालती में आ गए, है एवरलास्टिंग माने, हमेशा के लिए बुद्धि में बैठ जाए कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। एकदम अमरनाथ का बच्चा बन जाए, अमर लोक का वासी, आज जन्म लिया निश्चय बुद्धि हुआ, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाए कि ये मेरा बाप नहीं, मर जाए तो मृत्यु लोक में गया कि अमर लोक में, तो कहां पहुंच जाए? अमरनाथ का बच्चा अमर लोक में अनुभव करे और 2500 साल के लिए अनुभव करे। ऐसी स्टेज 76 से बन गई है, जो बन गई हो सो हाथ उठाओ, अभी तो एक ने भी नहीं हाथ उठाया। तो बताया कि 76 से नहीं कहेंगे, 47 से नहीं कहेंगे, 36 से भी नहीं कहेंगे, बड़े सिख सिख से मिलने वाले, बहुत पुराने समय से मिले हुए, कब की बात है, हाँ 5000 वर्ष पहले जो 2018 हुआ था, उस समय जो 8 बच्चे मिले थे जिन्होंने पहचाना था, जाना था, माना था, और प्रैक्टिकल में बाप के मृत्यु पर्यंत सहयोगी बन करके रहे थे, उन बच्चों की बात है पहले, फिर नंबर बार हम बच्चों की भी बात आती है, सिक्त सिक्त से मिलने वाले सिकील के बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता का, बाप दादा का याद और प्यार। याद क्यों कहा बाबा ने, तो मैं जो कहा मैं उन बच्चों को याद करता हूँ जो सबसे बल बच्चे हैं ईश्वरीय सेवा के, आसुरी सेवा में दिल नहीं लगाते, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, तो अभी ऐसे हैं, है तेरा बड़ा है, तो बाप के बच्चे, पेट की कोई चिंता नहीं, स्थूल पेट की कोई चिंता नहीं, और चिंता होनी भी नहीं चाहिए, अगर बाप और बाप के महावाक्यों पर निश्चय है, बाप तो बोलते हैं मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो गारंटी देते हैं, तो भी निश्चय पैदा नहीं करते कि हम पेट के धंधे, दुनिया के धंधे, देह के धंधे छोड़ देंगे तो हम भूख मरने वाले नहीं है, भले दुनिया में कितना भी बड़ा अकाल दुकाल पड़े, क्या दुनिया के बड़े बड़े साहूकार, मल्टी मिलियनायर, करोड़पति, अरबपति, उनकी नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, कोई नहीं उठाएगा, उनको रोटी का टुकड़ा भले न मिले लेकिन बाबा के बच्चों को जरूर मिलेगा। कौन से बच्चे? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, बाप की याद किन बच्चों को ज्यादा याद आएगी, है सबसे बोल, कैसे सबसे बोल, आधा देह का धंधा, आधा आत्मा का धंधा है,
पूरा बाप का बच्चा, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। ऐसे बच्चों के लिए बोला कि बाप सर्वसेबुल बच्चों को याद करते हैं, देह के धंधे में लगे हुए हैं तो दुनिया वाले कहेंगे तुम कहते तो हो कि हमारा बाप आया हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ है, भगवान बाप आया हुआ है, जिससे जन्म जन्मांतर की बेहद की प्राप्ति होती है। फिर तुम इस दुनियावी धंधे में क्यों लगे हुए हो, काहे के लिए मकान दुकान बनाए रहे हो। ओम शांति।